जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे?
SNS Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई आज ही SNS Lawyers नू कॉल करो 416-655-2000।
Investment Alert।
जी हाँ, 125 एकड़ जमीन का टुकड़ा ब्रांट के शहर में, जिसके तीन साइड पे सड़क लगती है, 1000 फीट राइट ऑन हाईवे 2, दूसरी साइड पे हाईवे 403, तीसरी सड़क प्रॉपर्टी लाइन की है। इसमें तीन बेडरूम का एक घर बना हुआ है, साथ में एक बड़ा शेड, एक बड़ा बान भी है। याद रखो, ये 82 एकड़ जमीन फार्मिंग के वास्ते इस्तेमाल हो रही है। इट्स अ मनी प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी, पोटेंशियल फ्यूचर डेवलपमेंट लैंड, एज इट इज राइट ऑन हाईवे 403। 125 एकर्स ऑफ लैंड इन ब्रांट। कॉल आरिफा मुजफ्फर
6478986245।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल की जी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
नान एंड कबाब GTA में 6 locations, और अब मिसिसागा में भी। नान एंड कबाब, ऑथेंटिक अगवान कुजीन, फ्रेश एंड डिलीशियस ग्रिल आइटम्स एंड डिनर प्लेटर। फॉर पिकअप एंड डिलीवरी ऑर्डर थ्रू nandk.ca, 90 एनिगम बुलेवार्ड मिसिसागा, और ओंटारियो n401-905-501-9889, 905-501-9889। नान एंड कबाब।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा, 416-894-5872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ। 416-894-5872।
और हर ट्यूसडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हो।
एना सोना कर लिया, हुन अप्लायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अप्लायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, 3-पीस किचन बंडल, इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, ते टीवी सेक्शन च सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड दा टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 Bowie Drive, West Brampton, ya call karo 905-450-2828, 905-450-2828।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज नासर शाह। आपको पता है पिछले 20 सालों से हम मॉर्गेजेस कर रहे हैं, लोन्स कर रहे हैं और कमर्शियल मॉर्गेजेस कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की मॉर्गेज चाहिए तो गारंटी आपको बेस्ट रेट ऑफर करेंगे, और साथ साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका भी बड़ा ध्यान रखते हैं। और कमर्शियल मॉर्गेज कभी भी आपको चाहिए किसी तरह की, होटल, मोटल, गैस स्टेशन या कोई फ्रेंचाइज लेनी या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना, तो उसके लिए भी हमें कॉल करें। और अगर आपको बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए भी हमें कॉल करें, 647-741-9000।
क्या आप एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और आपको बेहतरीन लॉयर की तलाश है? हेमोफार प्रेजेंस की आपके लिए एक जाना पहचाना लॉयर है, और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपके मसलों को उन तक पहुंचाती हूं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। कार एक्सीडेंट में आपका मशवरा लेना आपका कानूनी हक है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157।
अगर आपको रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, फैमिली मैटर्स, विल्स एंड एस्टेट मैटर्स या सिविल लिटिगेशन में कोई भी दुश्वारी हो या आपको फौरी मदद चाहिए, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए कांटेक्ट करें मलिक लॉ ऑफिस के मोहम्मद अतीक मलिक, बैरिस्टर एंड सोलिसिटर। सर्व करते हैं GTA में 2 locations से, 7045 एडवर्ड्स बुलेवार्ड स्वीट 203 मिसिसागा, 1825 मार्कहम रोड स्वीट 205 टोरंटो। Malik Law Office. Call today 647-726-1949. 647-726-1949.
उफ, घर लेना तो अब बहुत ही मुश्किल, अब तो सिर्फ तस्वीरें देख के ही घर ले सकते हैं।
लो भाई, तुम कॉल करो ना टीम हिना को और इंद्रजीत सजन को, उनके पास ब्रैम्पटन में अर्बन टाउन हाउसेस का प्रोजेक्ट है, 6 लाख कीमत है, 60,000 90 दिन में पे करना है, असाइनमेंट इसमें मौजूद है, लेवीज बिल्कुल कैप्ड है, इंटरसेक्शन मिसेस सागर और सैंडलवुड, $5,000 की बचत भी हो सकती है डेकोर डॉलर्स में। टीम हिना 416-993-6600, 416-993-6600।
अब मॉर्गेज लेना और भी आसान, सेंट्रम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के काकब जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी पर्पसेस, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपैरेबल रेट्स फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यूकमर्स टू कनाडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, असेस इन रियल एस्टेट, ही विल मेक मॉर्गेज इजी फॉर यू। कोकब जावेद मॉर्गेज एजेंट, 416-454-6065।
दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर ने बिल बहुत ज्यादा बता दिया, सोचती हूँ बैक होम जाके दांतों का मुकम्मल इलाज कराऊं।
छोड़ो भाई, किंग बेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री को विजिट कर लो, दांत निकालना हो, क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, बच्चों के दांतों का मुकम्मल इलाज, रूट किनाल ट्रीटमेंट और नए पेशेंट्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रश भी है, कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री।
पर जाना कहाँ है?
288 किंग स्ट्रीट वेस्ट हैमिल्टन में, 905-521-0540
GTMA सबसे बड़ा पाकिस्तानी हलाल बुफे, 40 से ज्यादा आइटम्स के साथ, अब विलेज टेस्ट पर मिसिसागा में, ब्रेकफास्ट बुफे सैटरडे एंड संडे 10 AM टू 2:30 PM, डिनर बुफे फ्राइडे टू संडे 5:30 PM टू 10:30 PM, पार्टी हॉल इज ओपन नाउ, मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 6477744888, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga, Village Taste.
Asian Food Center, 905-793-1338. आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले। Fruits and vegetables, groceries and staples, bread, dairy and egg, beverage and confectionery, branded foods, personal care and household, sweets and samosas. Order now for in-store free pickup, 905-793-1338. Home delivery is also available. Asian Food Center, 905-793-1338. Asian Food Center.
जी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई मीन हम सब ठीक हैं यहाँ स्टेशन के ऊपर। आप लोगों की खैरियत मतलूब है। प्रोग्राम में खुश आमदेद। हमारी वेबसाइट www.eawaz.com। आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा कलर पहना हुआ है।
थैंक यू सो मच।
अच्छा, जब मैं कभी ये वाला नीला रंग किसी लड़के को पहना हुआ देखती हूँ ना, तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल पाकिस्तान के याद आ जाते हैं। जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे ना, उसमें लड़के ऐसी नीली कमीज पहन के जाया करते।
अच्छा, कराची में जो है गवर्नमेंट स्कूल का था व्हाइट विद ब्राउन पैंट्स।
नहीं नहीं, ये नीला वाला लिबास जो था ना, जो गवर्नमेंट स्कूल, वो भी मतलब क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़े ठल्ली किस्म के जो लड़के होते थे ना, वो ऐसी कमीजें पहनते थे।
ठल्ली किस्म के लोग?
आई नो, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो थे ना, वो ये वाली नीले रंग की कमीज पहनते थे, नीली गुड़ी नीली।
अच्छा,
गुड़ा नीला रंग।
अच्छा, नहीं कराची में, नहीं कराची में व्हाइट विद ब्राउन पैंट्स, वो पता लगता था दूर से कि ये गवर्नमेंट स्कूल के लड़के हैं।
गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मैंने खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी वेबसाइट www.eawaz.com हमारी वेबसाइट है, जरूर तशरीफ लाएं। बिजनेस एबिलिटी टू डेफर टैक्स फॉर 2022 के लिए, ब्रैम्पटन साहब हमारा मेरी बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन गिव्स रेजिडेंट बिजनेस एबिलिटी टू डेफर टैक्स, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारी आ गई हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो चार्जिंग की अवेलेबिलिटी है उसको बूस्ट किया जाएगा, यानी मजीद सेंटर्स लगाई जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारी और मेन स्ट्रीम की न्यूज़ हैं. आप अंग्रेज़ी के सेक्शन में आए, हमारी उर्दू भी न्यूज़ में आए. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मैं न्यूज़ देख ही लूँ तो अच्छी बात है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी एक न्यूज़ इसमें हमारी वेबसाइट के ऊपर नज़र आई. ये तमाम की तमाम न्यूज़ यहीं पर डिवेलप की जाती हैं. उर्दू सेक्शन में अगर जाएँ, भारत में तेंदुए का स्कूल में घुसकर तालिब इल्म पर हमला, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी, स्टॉक मार्केट्स क्रैश, तीसरा दिन है, दो साल में ऐसी बुरी मार्केट नजर नहीं आई थी. 14 मंजिला और 1400 कमरों पर मुश्तमिल महलमा तारीख का सबसे बड़ा बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच गया. बल्कि ये न्यूज़ जब मैंने देखी तो मेरा दिल किया इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूं. तमाम की तमाम न्यूज़ आपको नजर आएंगी हमारी वेबसाइट eawaz.com पे. अगर आप आएंगे तो ये तमाम की तमाम न्यूज़ मिलेंगे आज के प्रोग्राम में. हमारे फेसबुक पर जो लोग हैं, प्लीज़ फेसबुक के ऊपर भी आप अपने कॉमेंट जरूर दिया करें. मगर पाकिस्तानी मैं खुद भी आपकी की तरह से हूँ, हम बड़े शहजादे किस्म के लोग हैं. एनीवेज, जमशेद जक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. You're always there for help and support. Help and support, Allah ना करे पैसे के लिए तो अपने कभी खून के रिश्तों की जरूरत ना पड़े, मगर ये जो moral support होती है, that means a lot. By the way, जब मैं moral support की बात कर रही हूँ तो Niagara Falls से कल मेरे एक भाई साहब का फोन आया, और सादात फैमिली से ही उनका ताल्लुक था, जो उन्होंने अपना तारुफ बताया था. एक तो होते हैं ना शिराजी, बहरहाल उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे गिला किया कि आपका बहन, मैं और मेरी बीवी हम गाड़ी में हैं तो अब आपका प्रोग्राम क्लियर बिल्कुल नहीं आता, बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी का ही प्रोग्राम चली जा रहा है. मैंने कहा सर 22 साल इस ज़िंदगी को गुजर गए, मतलब प्रोग्राम करते हुए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 4 महीने होते हैं जिसमें ज़ाहिर है 5 बजे प्रोग्राम ख़त्म. ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आप मेरी बात समझ नहीं रही, मतलब हम 5 बजे जब गाड़ी में आते हैं तो सिर्फ अंग्रेजी का प्रोग्राम आ रहा होता है आपका प्रोग्राम. मैंने कहा 4:45 बजे तो मैं खुद खुदा हाफिज कह देती हूँ, तो 5 बजे आपको कहाँ से मेरा प्रोग्राम सुनाई देगा. तो इन दिनों में यानी नवंबर, दिसंबर, नवंबर तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया, जिंदगी बस ऐसे ही हाथ से सरकती चली जाती है. अब दिसंबर और जनवरी 2 महीने का और अरसा इसी तरह से गुजरेगा कि हम 5 बजे आपको खुद, 4:45 बजे हम आपको खुदा हाफिज़ कहा करेंगे, उसके बाद अंग्रेज़ी का ही प्रोग्राम आता है. मगर अगर आपको कहीं स्टैटिक महसूस हो तो आप लोगों की सहूलत के लिए 6478724900 मज़ा तो फिर रहना है. अच्छा, इसमें ये बच्चे जो है ना पूरा का पूरा दिखा देते हैं कि टोरंटो का नंबर और है, मॉन्ट्रियल का और है, कैलगरी का अलग नंबर है, हर इलाके का शहर का नंबर दिया हुआ है, वैनकूवर का, एडमिंटन का, रजाइना का है. आप हमारी वेबसाइट पे आएँ तो रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, और अगर आप अपनी गाड़ियों में हों तो जस्ट लोकल नंबर 6478724900 डायल करके आप प्रोग्राम्स को इसी तरतीब से सुन सकते हैं. एनीवेज, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे जनाब लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ शामिल होंगे. 3-4 कंसर्न्स हैं. एक तो इंटरनेशनल मीडिया में ही एक आर्टिकल आया था, और ये आर्टिकल था कि अमेरिका ने जो फंडिंग की पाकिस्तान के मीडियाज़ की. कल के परसों मेरी एक बड़ी शख्सियत से, एक से मुलाकात हुई तो स्टूडियो में, तो मैंने कहा तुम पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बिल्कुल खौफजदा मत हो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कनाडा की किसी चीज़ के बीच में इंटरफेयर करेगी. हमें तो अपनी अपनी पड़ी हुई है, सियासतदानों को मामला ये है कि भाई जो बाकी पैसे बचे हैं चलो जी घर लेके कैसे जाने हैं. ये साहब, यूएस फंडिंग फॉर पाकिस्तान, ये एक न्यूज़ है जो कि द ट्रिब्यून .com पाकिस्तान में, यूएस फंडिंग फॉर पाकिस्तान जर्नलिस्ट रेजेस क्वेश्चंस, ये ट्रिब्यून पाकिस्तान के पे आया है. 2 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फायरिंग रिपोर्ट होम फ्रॉम वॉशिंगटन्स आर ड्रॉइंग देयर salaries from US State Department funding through a non-profit intermediary highlighting the sophisticated nature of American effort to shape its image abroad, the Christian Science Monitor report for on Friday. ये रिपोर्ट आप मेरी, बल्कि मैंने शाजिया जी से रिक्वेस्ट की थी कि विद द कर्टसी ऑफ ट्रिब्यून अगर हम अपनी वेबसाइट पे भी डाल दें तो यू मस्ट गेट अ चांस टू लुक एट दिस रिपोर्ट. तो 2 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज एक्सप्रेस न्यूज एंड दुनिया न्यूज, डिस्क्लोजेस that the reporters are paid by the non-profit American abroad media AAM on their website or report filed by their correspondents. ये report है, अगर आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं. अगर जाहिर है कोई भी इदारा कहीं पैसे खर्च करता है तो definitely just to put words in your mouth, that's all what it is. और ये non-profit organizations हैं जो इसको करती हैं. If an American journalist working as a foreign correspondent in Pakistan was paid in the similar manner, would it be normally professionally acceptable for his news organization or audience? अगर एक वो कहते हैं कि अगर कोई American को इस तरह से pay किया जाए तो क्या ये acceptable होगा कि अगर पाकिस्तानी journalist जो हैं इस payroll पे हैं और उनको इस तरह पैसे मिलते हैं तो आप imagine करें कितनी सख्ती आती है. Anyways, एक investment opportunity आपके साथ share करना चाहती हूँ. मैं आपसे request करती हूँ कि please get a chance to look at this opportunity. कोई ज़मीन का टुकड़ा हाईवे के ऊपर हो और उन शहरों के बीच में, टोरंटो में महंगाई होने की वजह से आप देख रहे हैं कि बेशुमार लोग आउटस्कर्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, लंदन की तरफ, ब्रैंटफोर्ड की तरफ, हैमिल्टन की तरफ, इस साइड पे मूव कर रहे हैं, इवन नियाग्रा फॉल्स की तरफ बहुत से लोग मूव कर रहे हैं. आप सोचिएगा नॉर्थ बेरी की तरफ बेशुमार लोग मूव कर रहे हैं कि दे गेट बेटर प्राइस. ब्रेंट का इलाका जो है ये ब्रेंटफोर्ड से पहले है, हैमिल्टन के बाद और ब्रेंटफोर्ड से पहले, और यहाँ पे कुछ एक बिल्डर्स अपनी जगह बना भी रहे हैं. ब्रेंट के इलाके में एक 125 एकड़ की जमीन है जो एक साइड पे हाईवे 2 को लगती है, दूसरी साइड पे हाईवे 403, बिल्कुल राइट ऑन 403. और इसमें आप पोटेंशियल देखिएगा कि अगर आप इसमें बिलबोर्ड ही लगा लें ना तो बिलबोर्ड का ही मंथली आपको इनकम बड़ी आ जाती है. जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट के लिए बिलबोर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं. ये 125 एकड़ है जिसमें 1000 फीट हाईवे 2 की तरफ है, 1000 फीट हाईवे 403 को फेस करता है. तीसरी रोड जो है वो कंट्री साइड की रोड है. बहुत बड़ा इसमें एक शेड बना हुआ है, 3 बेडरूम का घर बना हुआ है, बॉर्न बना हुआ है. अराउंड 100 एकर्स जो इसमें से 125 एकड़ में से 100 एकड़ जमीन वर्केबल है, जिसमें 82 एकड़ ठेके पे दी हुई है, यानी एग्रीकल्चरल ठेका है. ये ठेका अराउंड $250 पर एकड़ के ऊपर आपको मिलता है. पोटेंशियल है इसमें फ्यूचर डेवलपमेंट्स का, क्योंकि जाहिर है जितने बिल्डर्स हैं ये इस तरफ को मूव कर रहे हैं और नए लोग जो घर लेने वाले हैं वो भी इन इलाकों में घर लेते हैं. फर्दर इंफॉर्मेशन में 2 से 3 प्रोग्राम में अवतार राहल साहब से भी आप बात कर सकते हैं, बिकॉज ये उनकी एक्सक्लूसिव लिस्टिंग है. आप चाहें तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं. मेरा नाम आरफा मुजफ्फर, 6478986245 मेरा नंबर है, 8986245. एक मुलाकात, और मुलाकात में शिराज शफीक हमारे साथ होते हैं. अकाल मॉर्गेजेस के साथ आपका ताल्लुक है, और अगर आपको मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग, आप फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड लैंड मॉर्गेज, थर्ड मॉर्गेज के लिए ढूंढ रहे हैं, प्राइवेट फंडिंग ढूंढ रहे हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट अपनी बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने लोन्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो शिराज शफीक का नंबर 416-502-8000.
और फाजी शिराज शफीक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं. फोन नंबर एक दफा और नोट कर लें, 416-502-8000. शिराज, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सर, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है. आप सुनाए, ठीक है?
अल्हम्दुलिल्लाह. आज जो हमने टॉपिक पिक किया है शिराज, इट इज मॉर्गेज का जो है सेकंड मॉर्गेज, प्राइवेट सेकंड मॉर्गेज. जरा बताइए प्राइवेट सेकंड मॉर्गेज क्या है और लोग आपके पास क्यों आए, अपना क्रेडिट कार्ड क्यों ना यूज कर लें?
देखिए माजिद भाई, जब आप प्राइवेट मॉर्गेज की बात करते हैं ना, क्रेडिट एज कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास घर मौजूद है और घर के अंदर इक्विटी पड़ी हुई है, ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास घर होना चाहिए और उसके अंदर इक्विटी भी होनी चाहिए.
सही.
लोग क्यों जा रहे हैं जी कि सेकंड मॉर्गेज की तरफ चले जाएं, क्रेडिट कार्ड की तरफ क्यों ना जाएं? देखो, अगर आपके पास घर पड़ा हुआ है, उसमें इक्विटी पड़ी हुई है, आप अपनी इक्विटी के अगेंस्ट सेकंड मॉर्गेज उठाते हो तो वहां पे इंटरेस्ट रेट आपको कम पे करना पड़ता है. अगर वही आप इक्विटी अपने क्रेडिट कार्ड से यूज करते हो, मनी बोरो करते हो, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा पे करना पड़ता है. उस एग्जांपल में देता हूँ माजिद भाई. देखिए, लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है जी, अगर हम लोग सेकंड मॉर्गेज उठाएंगे ना तो वो बड़ी महंगी है, 10-12% उसका इंटरेस्ट रेट है या 13% इंटरेस्ट रेट है उसका, ठीक है, तो हमें वहां पे ज्यादा पे करना पड़ेगा. देखो जी, महंगी क्यों है? महंगी इसलिए कि उसके अंदर लैंडर की फीस मौजूद है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट रेट 10-12% है क्योंकि सेकंड मॉर्गेज है. लैंडर ज्यादा हाई रिस्क के ऊपर है, इसलिए वो थोड़ी सी महंगी भी है। देखो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि हमारे पास एक्सेल लैंडर काम करते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट और लैंडिंग फी बहुत कम है, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से कि अगर $40,000 आप बोरो करते हो अपने घर की इक्विटी के अगेंस्ट, तो आपकी मंथली जो किस्त है वो बनती है $333। अब मजबूरी अगर यही $40,000 आप बोरो करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, वहां पे इसकी मंथली किस्त बनती है $1,200। अब आप देखो कि कहां पे $1,200 कहां पे $333, ठीक है। आप किसी भी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर खराब है या आप अपनी अभी आपने रिन्यूअल करवाई है अपनी फर्स्ट मॉर्गेज की, आप उसको ब्रेक नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो आप सेकंड मॉर्गेज लेके बोरो करके अपने जो है जरूरत को पूरी कर सकते हो।
सही।
अगर आप यही $40,000 वहां पे करोगे क्रेडिट कार्ड से बोरो करोगे, वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट हाई पे करना पड़ेगा, वहां पे आपकी किस्त ज्यादा बनेगी, यहां पे आपकी किस्त कम बनेगी। इन पैसों के आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपनी बेसमेंट बना सकते हो, रेनोवेट करके उसको रेंट पे दे सकते हो। जब आप इसको रेंट पे देते हो तो देखो आज जो टाइम चल रहा है इस वक्त वन बेडरूम की बेसमेंट का रेंट मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता है $1,300 से $1,500 तक चल रहा है, ठीक है। अगर आप सेकंड मॉर्गेज उठा के इसको रेनोवेट करते हो तो आपकी सारी वहां पे $333 किस्त जाएगी। क्रेडिट कार्ड से करते हो तो वहां पे $1,200 आपको पे करना पड़ेगा। दोनों में फर्क है, आपको अच्छा खासा जो कैश फ्लो है वो मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कंसोलिडेट करना चाह रहे हो, क्योंकि वो हाई डेट क्रेडिट कार्ड है, हाई इंटरेस्ट रेट पे आप यूज कर रहे हो उनको, आप उन सबको इकट्ठा करके एक सेकंड मॉर्गेज बना लेते हो तो उससे भी आपकी मंथली जो किस्त है वो कम बन जाती है, ठीक है। तो आप अपने काफी ज्यादा जो पैसे हैं वो इन इस तरह से करके ना सेव कर सकते हो। देखिए बहुत मतलब माजिद भाई क्लाइंट आता है हमारे पास और कहता है जी आके जी हमें तो आपके बारे में पता नहीं था, हमारे जो बहन भाई हैं उन्होंने हमें ये मशवरा दे दिया। मेरी आप सभी बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है जी कि आप एक मरतबा जो है ना अपने बहन भाइयों को दोस्तों को हमारा जो है वो जरूर बताएं, रिकमेंड जरूर करें, ताकि वो अपनी ऑप्शन आके हमारे साथ डिस्कस कर सके और अपने जो पैसे हैं जो कि वो इस तरह से हाई इंटरेस्ट रेट पे करके जाया कर रहे हैं वो उनको सेव कर सके। देखो जब आप हमारे पास आते हो ना तो हम लोग जो है वो आपकी सिचुएशन को देखते हुए आपकी पोजीशन को देखते हुए हमारे पास ओवर 90 लैंडर्स है, हम उन 90 लैंडर्स की बकेट में से जो है आपके लिए अच्छी प्रोडक्ट यूज करते हैं। देखो जी हमारे पास आने का फायदा उसी वक्त आपको होगा अगर आपके पैसे बच रहे होंगे, अगर आपको की बचत नहीं हो रही होगी तो आपने हमारे पास क्यों आना है।
सही
माजी भाई, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से हाई डेट लेके बैठे हुए हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड उन्होंने काफी ज्यादा चढ़ाए हुए हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट बहुत ज्यादा उन्होंने उठाई हुई है, वहां पे वो $3,000-4,000 पे कर रहे हैं लेकिन उनको कंसोलिडेट करके वो एक मॉर्गेज नहीं अपनी करवा पा रहे क्योंकि उनको पता नहीं है, वो किसी से डिस्कस नहीं करते, वो उसी तरह से चलते जा रहे हैं। अगर कल की छोटी सी बात है, अगर एक कल भाई आए हैं हमारे पास बड़े अफसोस के साथ, रीजन ये थी कि वो जी क्यों आए, उनकी एक लाइन ऑफ क्रेडिट 45,000 की थी, एक 15,000 की थी, एक 25,000 की गाड़ी उन्होंने उठाई हुई थी, उसके ऊपर उनकी $400 किस्त जा रही थी, वो मंथली जो है $1,200-1,300 पे कर रहे थे। जब उनको कंसोलिडेट करके मैंने दिया तो उनकी जितनी वो मॉर्गेज अभी पे कर रहे थे ना उतनी ही उनकी बन रही थी।
सही।
तो वो एक्स्ट्रा 800 से लेके 1200 तक वो एक्स्ट्रा पे करते जा रहे थे, ठीक है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जी कि आप आओ अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करो, क्योंकि हम अकाल मॉर्गेज पर अगर आपकी फाइल को रिव्यू करके एक मरतबा आपको ओके कह दें तो हम हमेशा अपने वादे पे पूरा उतरते हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हो जी, मेरा नंबर नोट कर लो, शहराज शफीक अकाल मॉर्गेज
416-502-8000 आप शिराज शफीक का फोन नंबर है, कार मॉर्गेजेस के साथ मुंसलिक शिराज शफीक। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कमर्शियल या रेजिडेंशियल मॉर्गेज प्लीज गिव हिम अ कॉल। थैंक यू सर सो मच।
थैंक यू जी माजी भाई, अल्लाह
हाफिज।
सब डॉक्टर्स कहीं से भी मुल्क में गलती कर सकते हैं। बड़ी अजीबोगरीब खबर नजर से गुजरी, मैंने कहा मैं आपकी नजर से भी गुजारती चलूं। ऑस्ट्रिया के एक डॉक्टर ने सर्जरी की, बड़ी उम्र का पेशेंट था, उसकी टांग में तकलीफ थी और टांग की सर्जरी हुई। जिस टांग की सर्जरी से उस टांग को रिमूव करना था उसकी बजाय जो उसकी सही टांग थी उसको, बहुत बड़ी गलती तो
आरफा जी ये टोरंटो में हमारे वेरी क्लोज जानने वाले हैं, उनके साथ भी एग्जैक्टली सेम केस हुआ। वो लेफ्ट नी का उन्होंने करना था, वो राइट नी को उन्होंने कर दिया। वो भी बड़े मजाया शख्स थे, तो करने के तुमने एक को जिसको करना नहीं था तो उसको तो कर दिया ना, तो चलो अच्छा है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अब ये वाले कर दो।
हाँ नहीं, मगर ये उसकी टांग को रिमूव करना था, 82 years इस
पेशेंट रिमूव करना था,
टांग को रिमूव करना था, 82 साल के मरीज, बाईं टांग उनकी काटी जाना थी, लेकिन डॉक्टर ने गलती से दाईं टांग काट डाली। और गलती का अंदाजा उस वक्त हुआ जब टांग की पट्टी तब्दील की जा रही थी। ऑस्ट्रिया की मुकामी अदालत ने गुज़श्ता रोज इसका फैसला सुनाया, जिसमें 43 साल डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर था, जिसको गफलत का मर्तकब करार देते हुए 2700 यूरो यानी 5,36,000 रुपए का जुर्माना किया गया। ये मेरा ख्याल है 2700 यूरो इज नथिंग उस बंदे की, जो एक टांग सही थी वो तो
टांगें खत्म हो गई ना,
वापस नहीं आ सकती ना, कभी भी नहीं, बाकी सारी जिंदगी। खातून डॉक्टर ने कहा कि ये इंसानी गलती थी और उन्हें नहीं मालूम कि कैसे हुई। अगर गलती की बात जब मैं कर रही हूं तो पाकिस्तान के अदालती निजाम का जिक्र आता है। लीजिए साहब, मैं आपको कैनेडा के और यहां के निजाम का, अमेरिका के निजाम का जिक्र करना चाहती हूं आपसे। ये ना इंग्लैंड का, इंग्लैंड के निजाम का एक बहुत बड़ी राइटर है, एलिस वुड। वो जब जवान थी कॉलेज के जमाने में उनके, तो वो कॉलेज जा रही थी तो किसी एक शख्स ने उनको पकड़ा, उनको रेप कर दिया। मामला अदालत तक चला गया, उसके बाद परेड भी हुई जिस कुछ लोगों की, जिसमें उसको रिकग्नाइज करना था कि वो कौन था जिसने उनके साथ ये ज्यादती की थी। खातून कहती है, इसने बल्कि एक किताब भी लिखी है, इस किताब लकी के नाम से उन्होंने किताब लिखी थी, उसके बाद इस किताब के ऊपर फिल्म भी बनी थी, और ए क्लास राइटर हैं। ये न्यूयॉर्क अमेरिका की बात है, यूनिवर्सिटी जाते हुए इन्हें रेप का निशाना बनाया गया था 1981 में। उसके बाद परेड हुई थी, परेड के बीच में शी कुडंट रिकॉग्नाइज, अल्टीमेटली उन्होंने एक ब्लैक शख्स को रिकॉग्नाइज किया। और ये इन्होंने अपनी किताब लकी के नाम से, ये किताब थी उसमें ये याददाश्तों को उसने शाया भी किया। जिस शख्स को इसने रिकॉग्नाइज किया था कि जिसने इनके साथ ज्यादती की, उसका नाम था एंथनी। अब एंथनी बेचारा डिनाई करता रहा कर 18 साल जेल काटी, 18 साल। अब इसके ऊपर फिल्म बन रही थी, जब फिल्म बन रही थी ना, तो एक जिसने स्क्रिप्ट को मंजूर किया जाता है, एक शख्स जो था ना, उसने जब शहादतों पे नोर किया तो उसको लगा कि ये जिस शख्स को जेल हो गई है उसको गलत जेल हुई है। बाय द वे, यहां पर मैं ये भी याद दहानी कराती चली जाऊं कि अगर इस तरह के केसेस में किसी को सजा होती है और अगर वो शख्स जेल में से निकल भी आता है तो ये उसके रिकॉर्ड के बीच में रहता है कि इसने किसी के साथ,
मगर उसके साथ एक सर्टिफिकेट होता है उसके साथ कि भाई इट वाज़ डन।
नहीं, मगर उसके बावजूद बाद में भी ना उसके साथ वो डन हो जाती है, सजा तो डन हो जाती है, मगर उस शख्स के साथ वो
गवर्नमेंट हैज टू कॉम्पनसेट दिस पर्सन।
अच्छा, नहीं, अब क्या हुआ कि ये जब इसकी स्क्रिप्ट की, कहां इसका स्क्रिप्ट जब इसका, इनकी याददाश्त का पेश किया गया, तो एक जो प्रोड्यूसर था उसको लगा कि ये शख्स को सही सजा नहीं हुई। अल्टीमेटली वो शख्स ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट के बीच में जाता है, प्रूव करता है वाकई जो एंथनी था उसने इस औरत को रेप नहीं किया था, मगर 18 साल उसने जेल के पीछे गुजारा और उस शख्स ने अपनी जिंदगी के वो साल जाया कर दिया। अब वो जो एलिस खातून है, उन्होंने एलिस सेबोल्ड, उन्होंने, उसने सिर्फ एंथनी ने इतना कहा कि उसको अपनी गलती के ऊपर मुझसे माफी जरूर मांगनी चाहिए। उसने ये कहा है कि एलिस सेबोल्ड ने माफी मांगी है, उसने कहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि वो जो 18 साल इसने अपनी जिंदगी के जाया किए, मैं उसको वो वहां कैसे वापस लेके आऊं। बहरहाल अब ये जो किताब इनकी याददाश्तों की किताब है उसमें भी तब्दीली लाई जा रही है। खातून बेहतरीन राइटर बन गई, उनकी राइटिंग्स को पजीराई भी मिल गई, उनको शोहरत भी मिल गई, उन्होंने इस अरसे में पैसा भी कमा लिया। अब लकी में तरमीम होने के बाद जो नई याददाश्त होगी, शी विल मेक मनी ऑन दैट एज वेल, मगर एक शख्स की जिंदगी के 18 साल खराब हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड कि अल्टीमेटली वो शख्स जो है वो सुरखरू हो गया। मुकदमा दोबारा जो खोला गया वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। कहते हैं कि एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर मचानते इनका नाम है, उन्हें ये कहानी में जान नजर नहीं आई थी और उनको था कि एंथनी को गलत सजा मिल गई है। फिर मचानते जो एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर है उन्होंने प्राइवेट एक फर्म हायर करने के बाद पूरे के पूरे केस को दोबारा, इवन पुलिस कहती थी नहीं 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 इस शख्स को जो एंथनी है इसको सही सजा मिली थी। खैर गलती दुनिया के किसी खत्ते में भी हो सकती है। एक मुलाकात की तरफ माई जमाल लेकर के जाना चाहते हैं हमें मोहम्मद सदीक, ऑल डेट सॉल्यूशन से हमारे साथ हैं। अगर आप कर्ज के बोझ के तले दब गए, मोहम्मद सदीक ऑल डेट सॉल्यूशन, दे हैव सिक्स डिफरेंट लोकेशंस। उनका नंबर 416-671-0577। मोहम्मद सदीक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस ये नवंबर तो गुजर गया, दिसंबर और जनवरी इसी तरह टफ गुजरेंगे। अपना तारुफ कराइए, कंपनी का तारुफ कराइए और अपना नंबर बार बार बताते हुए बताएं कि आप कैसे गाइड कर सकते हैं।
जी वालेकुम सलाम भाई यार साहब, बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। और जैसा उन्होंने बताया कि हम पिछले 20 साल से लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, किसी भी वजह से अगर आप कर्जे में आ गए हैं, चाहे वो छोटा कर्जा या ज्यादा मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं या एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप कोशिश करते हैं मैक्सिमम कर्जा माफ करवा दें, बाकी छोटी छोटी किस्तों में बगैर इंटरेस्ट के पे करें, या अगर वर्सेशन हो तो बैंक्रप्सी में भी आपको गाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा भी कई ऑप्शन अवेलेबल हैं, डेट सेटलमेंट है, इन्फॉर्मल प्रपोजल है, ये हम सेटल करते हैं लोगों के डेट। और अगर इसमें क्रेडिट खराब होता है तो हम अपने क्लाइंट को एनरोल करते हैं क्रेडिट रीबिल्ड प्रोग्राम में और उनको बताते हैं कि कैसे क्रेडिट रीबिल्ड करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं और क्रेडिट कैसे अपडेट करना, क्रेडिट रिपोर्ट कैसे अपडेट करवानी है ताकि आपको जल्द से जल्द वापस क्रेडिट मिल सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कॉल कर सकते हैं 416-671-0577 416-671-0577। कर्जा चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स पे है, लाइन ऑफ क्रेडिट है, पर्सनल लोन्स हैं, पेडे लोन्स, इनकम टैक्स पर्सनल आउटस्टैंडिंग है सीआरए के साथ, या बिजनेस का जीएसटी है, या आपने कोई कार ट्रक या ट्रेलर फाइनेंस किया था, पेमेंट नहीं कर सके, वो उठा के ले गए, उस पर शॉर्टफॉल आई है, या स्टूडेंट वीज लोन है आप पे और आपको स्कूल कंप्लीट की हुई 7 साल से ज्यादा कर्जा हो गया है, तो ये सारे कर्जे हम आपके सेटल कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं या एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं या कलेक्शन की कॉलें आ रही हैं, मेरा मैसेज है अपना पैसा इंटरेस्ट की जरूरत में जाया बिल्कुल ना करें। कॉल करके चाहे फोन पे इन्फॉर्मेशन ले लें या मेरी किसी भी लोकेशन पे आके मुझसे मिल सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है, प्राइवेसी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। आए इन्फॉर्मेशन लें और उसके बाद देखें आपको क्या करना है। और मुझे कॉल करने का फायदा आपका ये है कि एक तो हम पिछले 20 साल से ये काम करके आ रहे हैं और थाउजेंड फैमिलीज और बिजनेसेस को हमने रिलीफ भी दिलवाया है और वापस क्रेडिट भी रीबिल्ड करवा के दिया है। दूसरी चीज हमारी कंपनी की मेन चीज है कि हम अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं, बैंक्स के लिए काम नहीं करते। जब भी किसी क्लाइंट के साथ मैं बैठता हूँ उनका केस रिव्यू करके ऑप्शन वो देता हूँ जिसमें मेरे क्लाइंट की बेहतरी हो। अगर रिलीफ लेना जरूरी हो तो बताता हूँ रिलीफ लें, कोई और ऑप्शन बेहतर हो तो उसकी तरफ भेजता हूँ कि ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा, रिलीफ ना लें। और अगर आपका केस रिव्यू करने के बाद मैं लूंगा तो इस चीज की मैं गारंटी करता हूँ कि मेरे ऑफिस से आपको कभी भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। जो आपसे पहली मीटिंग में वादा करूंगा उसके मुताबिक जब केस आपका अप्रूव हो जाएगा, अप्रूवल लेटर आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपकी पेमेंट शुरू होगी। उससे पहले कुछ आपने पे नहीं करना और मेरे ऑफिस से आपको ऑनेस्ट एडवाइस मिलेगी। अगर जरूरत हुई रिलीफ लेने की तो बताऊंगा रिलीफ लें, अदरवाइज बताऊंगा या रिलीफ ना लें। उसमें लोकेशन स्कार्बरो में है, मार्कम एलजमर के पास, इटोबिको में हेड ऑफिस है, किपलिंग रेक्सल के पास, मिसागा में है, टॉमकिन डंडास के पास, ब्रैम्पटन में है, डिक्सी वेड के पास। इसके अलावा पूरे कनाडा में हमारी लोकेशन हैं। अगर आप जीटीए से बाहर रहते हैं टोल फ्री नंबर है 1-855-671-0577 पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले लें। और अगर चाहेंगे तो हम आपको रिलीफ भी दिलवाएंगे और वापस क्रेडिट भी आपका रीबिल्ड करवा के देंगे। जीटीए के लिए फोन नंबर है 416-671-0577। वेबसाइट है www.alldebtsolutions.ca पे जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
ऑल डेट सॉल्यूशन के नाम मोहम्मद सिद्दीक साहब से मैंने आपकी बात करवाई। 416-671-0577 जनाब मोहम्मद सिद्दीक साहब का फोन नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
थैंक यू माहिद भाई,
थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
جناب محمد صدیق صاحب سے ہم نے آپ کی بات چیت کرائی, آئیے پھر اب ایک ملاقات کی طرف کو لے کے بڑھتی ہوں. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا آج کے پروگرام میں ہم آپ کو پاکستان لے کے چلیں گے, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے اپنے جناب لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. چند ایک کنسرنز ہمارے بھی تھے. جنرل صاحب کو بہت شکریہ کہ ویری لیٹ ایٹ نائٹ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟
جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں بہن آپ؟
اللہ کا بہت شکر ہے سر. موسم کیسا ہے پاکستان کا؟
موسم اب تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے ابھی آہستہ آہستہ. جی
ماشاء اللہ, آپ ٹورنٹو میں آئیے نا تو ٹھنڈ کا آپ کو پھر پتا چلے گا. سر آئی لک فارورڈ, ان شاء اللہ کرے کہ آپ سے ملاقات ہو پائے, آپ ضرور تشریف لے کے آئیے گا. سر آج بہت ساری چیزیں جو ہمارے دماغ میں ہیں جن کے بارے میں میں آپ سے ذکر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو میں کل افغانستان کے بارے میں, ظاہر وی آر آل کنسرنڈ افغانستان کی صورت حال سے, پتہ کہ ایران کہتا ہے کہ افغانستان نے اٹیک کیا, افغانستان کہتا ہے ایران نے اٹیک کیا, مگر غلط فہمی کے نتیجے میں. کچھ اس کے بارے میں فرمائیں گے, یعنی کیا ہوا؟
یہ بارڈر کلیشز ہوئے ہیں دونوں طرف سے, جو کلیمز ہیں وہ آپ کے صحیح ہے. میرا خیال ہے یہ کہ ایران کی طرف سے کچھ وہ کسی کو فالو کر رہے تھے تو کہیں اندر گھسائے ہیں وہ, جس پہ طالبان نے ریٹ کیا ہے. دونوں طرف سے نقصان ہوا ہے, کلیم دونوں کر رہے ہیں, اور امید کرنی چاہیے کہ اسے آگے نہ بڑھے, کیونکہ بہت ضروری ہے. ایران بھی بڑا ایک مضبوط ہمسایہ ہے افغانستان کا, اور دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ سٹیکس بھی ہیں. اور اس دفعہ جب یہ 15 اگست سے پہلے طالبان کا ایک وفد باقاعدہ ایران گیا تھا, ان سے ملاقات بھی ہوئی, اور اب زیادہ تر میٹنگز میں جو ہوتی ہیں وہاں پہ ایران بھی موجود ہوتا ہے. تو اس لیے ایران بھی ایک, چونکہ خطے کا ایک ملک ہے اور افغانستان کے ارد گرد جو 6 ملک ہیں ان میں سے ایک ملک ہے, تو ایران کے اور افغانستان کے تعلقات کا بہتر ہونا بھی بہت لازمی ہے. ایران کو چونکہ ریزرویشن تھی تھوڑی بہت جو پنچیر ویلی کے لحاظ سے, لیکن امید ہے کہ دوست بیچ میں پڑ گئے ہیں اور کافی حد تک یہ معاملہ بھی سدھر چکا ہے, اور اب امید کرنی چاہیے کہ دونوں ممالک مل کر آگے بڑھیں. امن ایران کی بھی ضرورت ہے, افغانستان کی بھی ضرورت ہے.
بہت شکریہ. یعنی ایک غلط فہمی کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوا سو ہوا. سر اس کو بھی کلیئر کر لیا. ریسنٹلی سر اگر آپ کے نوٹس میں آیا ہو کہ پاکستان میں ایک آرمی جنرل تھے, لیفٹیننٹ جنرل تھے, جن کو باقاعدہ ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی انفارمیشن کو ٹرانسفر کیا تھا ایران کی طرف اور مختلف ممالک کی طرف, کیونکہ وہ اپنے عرصے میں 2 دفعہ امریکہ گئے بھی تھے, اگر آپ کے نوٹس میں ہوگا. الٹیمیٹلی وہ سویلین کورٹ میں گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے, حالانکہ میں ریٹائر ہو چکا ہوا تھا, مگر میرا آرمی کورٹ میں مارشل لا چلا اور مجھ سے زبردستی سگنیچر دیے گئے. کچھ اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی بات ہم سے کرنا چاہیں گے؟
دیکھیں یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا. پاکستان کی فوج میں اتنا سینئر رینکنگ آفیسر جو اتنے عام عہدوں پر رہے ہیں اور ان پر جب الزام لگا تو وی ان فیکٹ آل آف اس ور ان سٹیٹ آف شاک.
اچھا,
لیکن جب یہ کیس چلا اور کیس کے بعد جب سزا ہو گئی تو اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ شاید جو پیز وغیرہ ہیں وہ روٹین ایک افیئر ہے, وہ چلتا رہے گا اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہو جائے گا. اب ایک یہ نیا اس میں ایک ٹوسٹ آیا ہے, اور جنرل جاوید صاحب نے اپنے وکیل کے تھرو اپروچ کیا ہے ہائی کورٹ کو, اور ان کی گزارشات جو بھی ہیں وہ تو خیر عدالت فیصلہ کرے گی, لیکن ممکنات میں سے نہیں ہے. ان کے اتنے سینئر آفیسر کو اس طریقے سے ٹارچر نہیں کیا جا سکتا, نمبر ایک. نمبر دو, زبردستی سگنیچر نہیں کرائے جا سکتے. اتنے چھوٹے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں کہ معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں, خود بڑے عام عہدوں پر رہے ہیں, وہ اس طرح سائن بھی نہیں کر سکتے. تو معاملات سنجیدہ تھے اور ہیں, اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہائی کورٹ بھی شاید اس کیس کو زیادہ دیر نہیں چلائے گی, کیونکہ معاملہ قومی سلامتی کا ہے, اور قومی سلامتی کے مسئلے پر چیف آرمی سٹاف کے لیول تک اگر فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر اتنے معمولی شواہد نہیں ہوں گے. شواہد کافی مضبوط ہوں گے, تبھی ان کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے, جو تقریباً عمر قید کے برابر ایک سزا ہے. تو وہ معمولی نہیں ہے. ان کے ساتھ دوسرے جو بگڑے تھے ان کو سزائے موت ہوئی ہے, اور ساتھ ایک سولین جو تھے ان کو بھی سزائے موت کی سزا ملی ہوئی ہے. تو معمولی کیس نہیں ہے یہ. ہماری تاریخ کا ایک ایسا کیس ہے جس پہ وی آر آل شاکڈ ان فیکٹ.
سر آج میں دو غلطیوں کا ہی ذکر کر رہی تھی, بائی چانس اسی ٹاپک پہ ہماری آپ سے بات ہونی تھی. اور وہ جو امریکن ایک آتھر ہیں جنہوں نے جو ان کی اب فلم بننے لگی تھی, اور انہوں نے بھی وہی ایک شخص 18 سال جیل کے بیچ میں رہ جاتا ہے, اور اس کی بھی مجھے شخص کی گریٹنس لگی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ان کو مجھ سے معافی مانگ لینی چاہیے. یہ بہت بڑی رائٹر ہیں, اور وہ بھی کہاں سے کہ فلم بن رہی تھی اور جو ایگزیکٹو ایڈیٹر ہے, ایگزیکٹو جو پروڈیوسر ہے اس کو لگا کہ جس شخص کو سزا ہوئی اور جس نے اینتھنی نے 18 سال جیل میں گزار دی ہیں اس نے جائز نہیں گزارے. تو بہرحال اس رائٹر نے بھی معافی اپنی مانگ دی. تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ضرور, کیونکہ میں جنرل صاحب کا پورا ڈاکیومنٹ اب انہوں نے عام کورٹ میں آیا ہے یہ اسلام آباد میں, تو میں اس کو بلکہ ڈاکیومنٹ کو جب پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک جگہ پہ لگا کہ ان کو اپنے ایک ایسوسیٹ سے خاص قلعہ ہے جن کو انہوں نے خاص طور پہ آ کے بتایا بھی کہ یہ ایک گیم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں ان امریکہ, اور میں نے اس جگہ پہ آ کے کہا ہے کہ دیر آر ریزرویشنز. تو ان کو گلا یہ ہے کہ انہوں نے آ کے غلط بیان دیا. بہرحال مجھے یقین ہے کہ ہم دوبارہ اس سلسلے میں آپ سے ضرور بات کریں گے. سر میں پاکستان کے بارے میں ایک اور بات اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کرنا چاہتی ہوں. یہ سر آیا ہے کہ امریکنز نے, یہ ایک این جی او ہے, ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس نے پیسہ خرچ کیا پاکستان کے جرنلسٹ کے اوپر. وہ کہتے ہیں میڈیا تنظیموں ایکسپریس نیوز دنیا نیوز میں سے انہوں نے کہا ہے کہ رپورٹرز کو ان کی ویب سائٹس یا ان کے نامہ نگاروں کی طرف سے رپورٹس میں غیر جو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اور اس کی طرف سے ادائیگی کی جاتی ہے, اگرچہ فروری میں جو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اس فروری سے یہ لوگ اس سے کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں غیر ملکی نامہ نگاروں کے طور پر کام کرنے والے ایک امریکی صحافی کو اسی طرح اگر ادائیگی کی جائے تو کیا یہ اخلاقی یا پیشہ وارانہ طور پر اس کی نیوز آرگنائزیشن اور سامعین کے لیے قابل قبول ہوگا؟ اب جب پاکستان کے جرنلسٹ ابراڈ کام کرتے ہیں اور ان کو رقم دی جاتی ہے, تو کہتے ہیں کہ اس منصوبے کے لیے مختص کی گئی رقم 2 سالوں کے دوران محکمہ خارجہ کی طرف سے عوامی سفارتکاری کے فنڈ سے $2 million ہے, اور واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کے حکام کے مطابق جو اس منصوبے سے واقف بھی ہیں یعنی منسٹری آف فارن افیئرز, اس میں چند ایک چینلز ہیں جن کے صحافیوں کو یہ پیسے دیے جائیں گے. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس کہ ابراڈ کنٹریز فارن کنٹریز پاکستان کے صحافیوں کو پیسہ دیں؟ ڈیفینیٹلی اف دے ول پے دیم دے وڈ آسک دیم ٹو سے اور ڈو اور کنوے واٹ ایور دے وانٹ.
دیکھیے چیف آرمی اسٹاف کے لیول تک تو یہ بات کہی جا چکی ہے کہ پاکستان ایک ہائیبرڈ وار کا شکار ہے اس وقت, اور اس میں بیسک کوشش یہی ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پر انسٹیبل کر دیا جائے اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ سٹلا ہونے دیے جائیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے جس سے آپ کی اکنامک ریکوری ہے وہ نہ ہو سکے, اور پاکستان اس جگہ پر رہے ایک ٹیپ پر رہے جب چاہے امریکنز اس کو یا دوسرے جو خیری ملک ہیں جو وہ پاکستان کو تھوڑی بہت امداد دے کے اپنی مرضی سے کام کرا سکیں. یہ تو ایک حقیقت ہے, بدقسمتی ہے لیکن حقیقت ہے یہ. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام ملک جو اپنے نیریٹو کو یا بیانیے کو عام کرنا چاہتے ہیں وہ تقریبا ہر حربہ استعمال کرتے ہیں, اور اس میں غیر ملکی صحافیوں کو استعمال کرنا اور ان کو مختلف طریقوں سے کمپنسیٹ کرنا, مختلف فنڈس کے ذریعے کمپنسیٹ کرنا, یہ بھی ایک نون چیز ہے, یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے. بھارت نے بھی تقریباً $300 million اس پہ خرچ کیا ہے پاکستان کے اندر یہ وعدے اٹھانے کے لیے, اس نے مختلف قسم کی آرگنائزیشنز کو لے کے آئے ہیں سامنے جس سے یہ کام لیتے رہے ہیں یہ. اور ہماری صحافت میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا ضمیر تو میں شاید سخت لفظ ہو جائے گا کہ وہ مالی فائد کے لیے اس قسم کی سٹوریز فائل کرنا شروع کر دیتے ہیں یا سٹوریز کو اینگل دینا شروع کر دیتے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں دوسری طاقتوں کے مفاد میں ہے. اگر امریکہ अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहता है और चाहता है कि दुनिया या पाकिस्तान में अमेरिका के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बने और अमेरिका को एक दोस्त मुल्क के तौर पर देखा जाए और अमेरिका को देखा जाए मुकाबला खास तौर पर चाइना के, तो वो अमेरिका इससे गुरेज नहीं करेगा। ये अमरीकियों की एक बहुत अच्छी बात यह है, कोई शर्म में शर्म नहीं रखते, उन्हें अगर काम लेना है तो फिर वो धूम धड़के से पैसा लगा के काम लेते हैं। और एक खूबी उनकी यह भी है कि जब काम उनका हो जाए तो फिर ऐसे लोगों को वो टिश्यू की तरह इस्तेमाल कर फेंक भी देते हैं और फिर उनके पुश आगे पीछे उनके जाते भी नहीं है ज्यादा। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में जब से सीपैक अनाउंस हुआ है, उससे पहले भी लेकिन सीपैक अनाउंस होने के बाद से एक खास लॉबी सरगर्मियां मिल रही है सीपैक के बारे में और चाइना के बारे में। चाइना के मुखालिफ प्रोग्राम्स काफी ज्यादा आवाजें भी उठती रही हैं, आर्टिकल्स भी लिखते जाते रहे हैं, बातें भी होती रही हैं और यहां तक भी कहा गया है कि चाइना अब पाकिस्तान पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर लेगा और इसके बाद पाकिस्तान एक किस्म की कॉलोनी बन के रह जाएगा। तो इस किस्म की बातें होती रही हैं और ये वो तमाम वो आवाजें वो हैं जो पाकिस्तान का इस खित्ते में बढ़ता हुआ असर रसूख, खासतौर पर चीन के हवाले से, ये जो एक कनेक्टिविटी का एक ख्वाब है जो चीन ने भी देखा है, पाकिस्तान ने भी देखा है और ईरान भी उसमें शामिल है, दूसरे ममालिक भी उसमें शामिल है, तो इस ख्वाब को अगर आप देखिए तो ये डायरेक्टली हिट करता है जो मगरबी दुनिया के अमेरिकन के खासतौर पर इंटरेस्ट हैं इस रीजन में। तो इसलिए ये कोई बड़ी कयास नहीं है और मेरे लिए कोई हैरानकुन चीज नहीं है और मुझे लगता है कि इसमें काफी सारी हकीकत होगी। उम्मीद यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इसके बाकायदा एक इंक्वायरी कराकर अगर कैसे लोग हैं उसमें और उनका कोई जायज उनके पास कोई वो उजर नहीं है तो फिर उनको डील करना चाहिए और सहाफी तंजीमों को भी और ये जो हमारे मीडिया चैनल्स भी हैं और मीडिया के मालकान हैं उनको भी इस चीज पर नजर रखनी चाहिए कि इस किस्म के उनके जो नाक तले इस किस्म की चीज ना हो। ठीक है रिपोर्टिंग करें पाकिस्तान के फेवर में या खिलाफ वो अलग बात है, लेकिन कम से कम उसको वो एंगल्स ना दें, वो ट्विस्ट ना दें जो पाकिस्तान की इंटरेस्ट के खिलाफ हो। आप हमारे हमसाये में देख लीजिए, भारत में एक जुबान होकर बोलते हैं सारा मीडिया, उनका जो हुकूमत की पॉलिसी है उसके मुताबिक काम करते हैं वो कभी उनमें से इस किस्म की अगर कोई आवाज उठती भी है तो उसको मीडिया खुद भी दबा लेता है उसको।
बहुत शुक्रिया सर। सर आप जब ये वाली बात कर रहे हैं तो बहुत सारे सवाल मेरे अपने दिमाग में भी हैं। बाय द वे कल आपको हमारी वेबसाइट पे अगर आप आएँ तो आई थिंक आई पोस्टेड दो दैट आर्टिकल एज वेल, डेली जो है न्यूज़ डेली इंग्लैंड का और उसने एक मेन स्ट्रीम का यानी बरतानवी रिपोर्टर है जिसने मियाँ साहब की प्रॉपर्टीज़ को किया। मैं आगे सर इस पे तो मैं आती हूँ, मगर पाकिस्तान में बाय द वे सहाफ़ी बहुत चीखते चिल्लाते थे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर अलवी ने सहाफ़ियों के तहफ़ के बिल पर दस्तखत कर दिए और अब ये कानून बन के रह गया है। इस पे बहुत से लोगों ने बातचीत की, मगर वो जो इस कानून का तो उनको बड़ा फायदा है, वो कहते हैं जी बिल्कुल हमें तहफ़ फराहम दे दिया गया, मगर इसकी एक सेक्ट 6 शक नंबर 6 जो है, मैं कोट एंड कोर्स में उसको पढ़ती हूँ, उसका मकसद एक इसमें जो एक कंडीशन है वो ये है कि अगर मीडिया वर्कर्स को नेक नियति पर काम करने का जो शक नंबर 6 है उसके मुताबिक, यानी कोई सहाफी या मीडिया वर्कर हर मवाद को फैलाने का जिम्मेदार बनेगा और जो खबर वो फैलाए उसके पास ऑथेंटिक उसकी बैकग्राउंड होनी चाहिए, ठीक है, अगर उस खबर की तस्दीक नहीं होगी तो वो सहाफी सजा का मुस्तहिक होगा। अब पाकिस्तान के बाज़ जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई हम दुरुस्त ना दुरुस्त कैसे कह सकते हैं, हो सकता है कि ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हो जाएं तो हम उस खबर को प्रूव ना कर सकें, तो इसका मतलब है दे आर रेडी टू स्प्रेड फेक न्यूज, तो कुछ कहेंगे yes. इसके बारे में? सर मैं हामिद मीर साहब को ये पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि बिल के सेक्शन 6 के जरिए अगर किसी खबर के दुरुस्त होने या न होने की तमाम जिम्मेदारी सहाफी पर आयद की गई जो ये खबर देगा, और अगर वो गलत होती है तो इस सहाफी को बदनीयत कंसिडर किया जाएगा। हामिद मीर साहब कहते हैं कि खबर देने के लिए जमीनी हकायक मुख्तलिफ भी हो सकते हैं और یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحافی انڈر پریشر ہو. تو اب صحافیوں کو اس بل کو تو وہ ویلکم کر رہے ہیں, مگر جو چیز شک نمبر 6 ہے, یعنی جو کنڈیشن نمبر 6 ہے کہ صحافی کو کوئی خبر دینے کے لیے اس کی اوتھینٹیسٹی پرووائڈ کرنی پڑے گی, دے ڈونٹ وانٹ دس نمبر 6. تو واٹ وڈ یو سے؟
مطلب کہنے کا یہ کہ افواہیں پھیلانے کی ان کو اجازت ہونی چاہیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے, کیا آپ وہاں پہ بیٹھ کے کینیڈا میں کوئی ایسی خبر دے سکتی ہیں جس کو آپ اوتھینٹیکیٹ نہ کر سکیں؟
کورٹ میں لے جاتے ہیں, کورٹ میں لے جاتے ہیں اگر غلط خبر ہو تو.
یہ غلط خبر ہو نہ صرف کورٹ میں لے جاتے ہیں, بلکہ فائنز بڑے سخت ہوتے ہیں, سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں, بہت سے لوگوں کو اپنے کام چھوڑنا پڑا اس وجہ سے. یہ تو آن ریکارڈ ہے یہ چیزیں, ہم کیوں اس بات سے گھبرا رہے ہیں؟ آپ خبر مت دیں جب تک اس کی تصدیق نہیں کر سکتے آپ اس کو.
بہت خوبصورت,
یہ
بہت خوبصورت
بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان میں بہت ساری افواہیں پھیلائی جاتی ہیں جان بوجھ کر.
اچھا, اب وہ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بل ڈرافٹ ہو رہا تھا, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میری کریکشن کے لیے, کہ لفظ ہوتا ہے شک نمبر 6. تھینک یو ویری مچ فار کریکٹنگ می. مگر میں جو انہوں نے کہا کہ جب یہ بل ڈرافٹ ہو رہا تھا تو یہ شک نمبر 6 جو تھی اس میں شامل نہیں تھی, اس کو بعد میں شامل کیا گیا اور صحافیوں کو اس سے لاعلم رکھا گیا. آئی ایم ویری سرپرائز کہ واٹ کائنڈ آف ریسپانسبلٹی دیز جرنلسٹ ہیو, کہ ان کو کیا پرابلم ہے, کیوں اوتھینٹک نیوز نہیں وہ دے سکتے, کیوں وہ پرانی خبروں کو نیا کر کے دیتے ہیں اور ان کو ایڈٹ کر کے دیتے ہیں.
دیکھو ڈیلیبریٹ ہے نا یہ, تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر ایک خاص نقطۂ نظر کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بہت سے حربے استعمال ہوتے ہیں, فیک نیوز اس کا ایک حصہ ہے, اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. جب آپ خبر اس کے ہیڈنگ دیکھ لیں کیا ہوتے ہیں, اندر جو خبر نکلتی کچھ اور نکلتی ہے, خبر ہوتی بھی نہیں ہے ان کے پاس کچھ. یہ تو ایک کاروبار بن کے رہ گیا نا پاکستان میں, اور میرا خیال ہے کہ یہ اتنا منفی اسٹیپ نہیں ہے جتنا کہا جا رہا ہے. ان کو عادت پڑ جائے گی صحیح بات کرنے کی اور سچ بات کرنے کی, اگر کسی کے ان کے پاس نہیں ہے. یہ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ ذرائع سے اطلاع ملی ہے ہمیں, یہ ہم ذرائع نہیں بتائیں گے, بھی مت بتائیں ذرائع, لیکن وہ ثابت تو کریں جو خبر آپ نے دی ہے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ذرائع ہوتے نہیں ہیں, یہ کسی کی فگمنٹ آف امیجنیشن ہوتی ہے یا ایک خاص جو بیانیہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے بات کی جاتی ہے, تو اس سلسلے میں ان کو ڈیفینیٹلی یہ چیز پسند نہیں آئے گی. کیونکہ بدقسمتی سے ہم نے بہت میڈیا میں جو آبجیکٹیوٹی تھی وہ کچھ حد تک تو ہے کسی جگہ پر, لیکن کئی جگہ پہ ہم نے اس سے بہت آگے نکل چکے ہوئے ہیں اور سبجیکٹو ہو گئے ہیں بہت زیادہ. اور میڈیا ہاؤسز کو اب تو وہ بہت سے لوگوں کی آڈیوز بھی لیک ہو رہی ہیں کہ اس میں
دیٹ از پیتھیٹک. یعنی یس, یہ ایک پوڈ کاسٹ کے ذریعے ٹیکنالوجی میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر میں نے اپنا ایک پوڈ کاسٹ بنایا ہے تو الیکٹرانکلی کمپیوٹرز ہماری آواز کو, اکثر ٹیلی فون پہ لوگ اپنے سیل فون میں اپنی جو آئیڈینٹیٹی ہے اپنی آواز رکھ سکتے ہیں یا اپنا آئرس اپنی آنکھ کو رکھ سکتے ہیں. تو اگر میں نے ایک پوڈ کاسٹ بنایا ہے کہ میں عارفہ مظفر 770 پہ اس وقت آپ کے ساتھ ہوں, آج 2 دسمبر دوپہر کے 2 بجے کا وقت ہوا چاہتا ہے, یہی آڈیو اگر میرے کمپیوٹر کے بیچ میں سیو ہو جائے تو کل پلے ہو جائے گی اور کل یہ آٹومیٹک ایڈٹ ہوگا اور کہے گا کہ میں عارفہ مظفر 770 AM پہ آپ کے ساتھ ہوں, آج 3 دسمبر کو دوپہر 3 بجے میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. اٹس الیکٹرانکلی اٹس پاسبل. تو کیا وجہ ہے کہ ہم سر ہمیشہ کام کرتے ہیں, ایک شخص نااہل ہوتا ہے, حکومت چلی جاتی ہے, اگلی بار وہی شخص اہل بھی ہو جاتا ہے اور ہم اپنی عدلیہ کا اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں جو جائز کیسز ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتے. یعنی اس دن اینی چانس کہ ان چیزوں کو صحیح کیا جا سکے گا کہ اب چیزیں دن بدن ٹوٹی ہوئی جوتی اور ٹوٹتی چلی جائے گی؟
دیکھیے ہماری بھی خواہش بھی ہے, دعا بھی ہے. یہ خاص طور پہ نظام عدل کے حوالے سے تو میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ ارکائک ہے, بہت پرانا ہے, اور اس میں ڈیلیبریٹلی اتنی ڈسٹارشنز کریٹ کر دی گئی ہیں کہ ایک کیس جو پاکستان کی جونیئر 3 عدالت میں شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے ختم ہوتا ہے اور کئی دفعہ سپریم کورٹ سے پھر واپس آ جاتا ہے. ایک کیس 50-50 سال کیس چلتے ہیں. یہی پاکستان کی عدالتوں میں یہ ہوا ہے سپریم کورٹ کے لیول تک یہ بات ہوئی ہے کہ بندہ بے گناہ ثابت ہوا, جب بے گناہ ثابت ہوا پتا چلا جی اس کو تو پھانسی ہو چکی ہوئی آلریڈی.
سر
یہ بھی ہوا ہے کہ لوگ اپیل نہیں کر سکے, اپیل کرنے کی کوشش میں لگے رہے, اپیل نہیں سنی جا سکی ان کی, اور 18 سال 20 سال خاتون پچھلے دنوں ریلیز ہوئی ہیں جو بے گناہ جیل میں رہی ہیں اتنا عرصہ. یہ بھی ہمارے نظام عدل کا ہی ایک حصہ ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن نظام عدل سے جب غلطی ہوگی تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بعد انصاف تو انہیں لوگوں کے پاس جانا ہے ہم نے, ورنہ تو یہ معاشرہ ایک جنگل کا بن کے رہ جائے گا یہاں پر, پھر جس کی لاٹھی اسی کی پھینس ہوگی اور جتہ داری پھر شروع ہو جائے گی اس میں. تو نظام عدل کا درست ہونا کسی بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے, اور نظام عدل کا نہ صرف یہ کہ قانونی طور پہ درست ہونا بلکہ اس کا ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہونا, ایک عام آدمی اور بڑے آدمی میں اس کا تفریق نہ ہونا, اور بہت جلدی اور ٹائم کے مطابق اس کے فیصلے ہونا, اور ایک کیس سالہ سال تک لٹکا نہ رہے, اور ایک خاص چیمبر کے یا ایک خاص نقطہ نظر کے وکلاء کو ہمیشہ ریلیف نہ ملتی رہے, دوسروں کے اس کے خلاف بات نہ جاتی رہے. پھر یہاں پہ یہ بھی کیس چلتا ہے, آج وکیل نہیں آیا, کل وکیل نے کچھ اور بات کر دی, کسی دن وکیل چینج ہو گیا, یہ مسئلہ بنا. یہ بہت ساری چیزیں یہ درست ہونے والی ہیں پاکستان میں, اور یہ ہونا پڑے گا اس کو. انہیں دیکھیے عوام کتنی دیر تک اس کا صبر کریں گے, کتنی دیر برداشت کریں گے. ایک عام آدمی جب دیکھتا ہے کہ انصاف اس کو نہیں مل رہا تو اس نے پھر اپنے لیے کچھ راستہ تلاش کرنا ہے, اور وہ راستہ انفارچونیٹلی جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے پھر وائلنس کی طرف لے جاتا ہے لوگوں کو. اور اگر یہ اس طرف ہم چل پڑے تو پھر معاشرے کا بگاڑ سنبھالنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نظام عدل کو 1935 سے نکال کر لے کے آئیں آج کے دور میں, اور آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو ترتیب دیں, اپنے قوانین کو ہم سادہ کریں, قوانین کو لاگو کرنے کا میکنزم صحیح ہو ہمارا,
بہت
اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں.
سر آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو میں نور مقدم کیس کے بارے میں, آپ سوچئے گا کہ جعفر ان کے والد بھی بہترین پوزیشنز کو ان کے والد نے انجوائے کیا, اور میں اس ویڈیو کو دیکھ کے پریکٹیکلی میرا دم گھٹ رہا تھا کہ جس طریقے سے وہ اس کو کھینچ کے اور مار کے دوبارہ اندر, لڑکی اپنی جان بچاتی ہوئی چوکیدار کے شیڈ میں چھپتی ہے, اور میں حیران ہوں کہ گھر کے بیچ میں ملازمین تھے, چوکیدار اور دو لڑکے وہاں کھڑے ہوئے ہیں, کسی شخص کو جرت نہیں تھی کہ وہ انٹرفیئر کر سکتا. یہ نظام وہ ہے کہ جس نے جعفر کو آج ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ذہنی پرابلم تھی, جس کے لیے تو اتنے جو نوکر تھے ان ساروں کو جیل کروا کے مروا دینا چاہیے کہ بھئی تم لوگوں کو پتہ بھی چلا تھا کہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو تم لوگوں نے کیوں کسی ڈپارٹمنٹ کو کانٹیکٹ نہیں کیا تھا. سر آپ کا بہت شکریہ. مگر جعفر کا کیس اگر میں دیکھتی ہوں, پھر سر وہ ایک عثمان لڑکا تھا جس نے ایک جو بھی کوئی تھے وہ فیانسیز تھے یا جو بھی تھے, یعنی اس کے بعد جو رات بھر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی, اور وہ جب اس کو جیل میں لے کے آتے ہیں اور وہ جیل میں آ کے لڑکا کہتا ہے بڑوں کو اور پیروں کو میرا سلام پہنچا دینا, بیکاز اس کو پتا ہے کہ اس نے جیل سے نکل جانا ہے, آج نہیں 2 سال 3 سال کے بعد اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ جیل سے نکل جائے گا.
عرفہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایک آواز کبھی وزرات کو سننے نہیں دیتی. ایک نوجوان شام کو 5 بجے لاہور میں کیولی گراؤنڈ کی سڑک پہ مرڈر ہو گیا تھا
جی سر,
اور کیس سپریم کورٹ پہنچا, اور جب یہ کیس ہوا تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور سب نے بڑا شور مچایا, جی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. اس خاتون نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر روتے ہوئے یہ بیان دیا تھا عرفہ کہ میں یہ کیس وڈرا کر رہی ہوں, کیونکہ مجرم بہت بڑے ہیں, بڑے مضبوط ہاتھوں والوں ہیں, میں بچیوں والی ہوں, میں ان کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتی. اس خاتون نے اپنے جوان سال بیٹے کا قتل کا مقدمہ واپس لے لیا اسی خوف سے کہ مجرم بہت زوراور ہیں, طاقتور ہیں, بہت انفلوئنشل ہیں, اور سپریم کورٹ میں یہ بیان دیا اور سپریم کورٹ نے یہ بیان قبول کیا.
سیڈ ہے سر, اور یہ بیان سپریم کورٹ نے قبول کیا, اور جو شخص, سر میرا دم گھٹتا ہے, کبھی روزہ ہم رکھتے ہیں نا تو ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ مجھے کسی کی بھوک پیاس کا احساس ہو. میں رات سوچ رہی تھی کہ ہمیں پریکٹیکلی کسی کی بھوک کا احساس نہیں, اور حقیقت میں اگر پیٹ میں کھانا نہ ہو تو خدا کی قسم رات کو نیند نہیں آتی. हम और मेरे तक ये बात आज बता कौन रहा है, पाकिस्तान की वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पोजीशन, और ये वो पोजीशन पे रहे हैं जो ना रिश्वत से मिलती है, ना सिफारिश से मिलती है, ना पैसे से मिलती है. टू बिकम अ 3-star जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, यू हैव टू अर्न इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सर सैड, मगर आपका बहुत शुक्रिया कि इन तलख सवालों के लिए भी आप हमारे साथ शामिल हो जाया करते हैं. हमको तसल्ली ज़रूर मिल जाती है कि एटलीस्ट ऐसे शख्स तक बात पहुंची ज़रूर जो हमारी बात को कहीं मुनासिब जगह पे पहुंचा सकता है, वरना तो लीडरशिप है तो वो सो रही है. आपके जितने जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, इट वॉज देयर इन्वेस्टमेंट, दे आर ऑल स्लीपिंग, दे आर ऑल वर्किंग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स.
देखिए मैं मायूस नहीं हूं, क्योंकि एक तो इसलिए कि हम बात कर लेते हैं, आप बात कर देती हैं, और बहुत से लोग बात करने वाले हैं, और जब बहुत से लोग मिलकर एक बात उठाते हैं तो आवाज सुनी जाती है, और आज नहीं कल नहीं
इंशाल्लाह
इस निजाम की दुरुस्ती के लिए लोग भी उठ रहे हैं, आवाजें भी उठ रही हैं, तो दुरुस्त होना पड़ेगा इस निजाम को
इंशाल्लाह.
और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि शायद हमारी नस्ल तो ये ना देख सके,